रहे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से जकर्याह नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, परंतु आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आप बड़ी दया के द्वारा हमारे जीवन में देते हैं, ताकि प्रभु दूर दराज में रहकर भी आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन हम एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं आपके वचन को सुनने के लिए, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के मन और हृदय को तैयार करें, उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि आज का वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, प्रत्येक जीवन में आपके वचन को बोने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की कमी घटी त्रुटियों से आप उन्हें छुटकारा दें, उनके पापमय जीवन से छुटकारा दे, ताकि वे पवित्रता का, नम्रता का, दीनता का, ईमानदारी का जीवन जी सकें। आज अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकर्याह नबी की पुस्तक में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कह दिया है कि वह इसराइल को पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर से एकत्र करके फिर यरूशलेम में बसाएगा और उनके मध्य वास करेगा। उस समय उनकी प्राकृतिक स्थिति सुधर जाएगी और मौसम फसल उगाने के अनुकूल होंगे। वे संपूर्ण विश्व के लिए आशीष का कारण होंगे। परमेश्वर ने उनकी भलाई करने की ठान ली है, परंतु उन्हें कुछ करना है। जी हाँ, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना है, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना है और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना नहीं करना है और झूठी शपथ से प्रीति नहीं रखना है। ये सब परमेश्वर के लिए घृणित हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए जकर्याह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 13 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहूदा के घराने और इसराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाएं। मेरे मित्रों, आज वे जाति जाति में श्राप का कारण है। उन्होंने यह देख लिया है कि उनका मूल्य एक लीटर पेट्रोल से अधिक नहीं है। संपूर्ण विश्व में यहूदी विरोध व्याप्त है। परमेश्वर कहता है, जब मैं उनका उद्धार करके उन्हें स्वदेश लौटा लाऊंगा, तब वे संपूर्ण विश्व के लिए आशीष का कारण होंगे। मुझे विश्वास है कि इसराइली पृथ्वी की सब अन्य जातियों के याजक होंगे। प्रभु राज में वे परमेश्वर और अन्य जाति के मध्य खड़े होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा है। जकर्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया। लिखा है सेनाओं का यहोवा यों कहता है। देखिए यह वाक्यांश कितनी बार आता है। जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, क्रोध दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है मैंने अपना विचार नहीं बदला। मेरे मित्रों, इस अंश में हम भविष्य के बारे में देख रहे हैं। जब परमेश्वर यरूशलेम को पृथ्वी की राजधानी बनाएगा, परमेश्वर कहता है कि उसे कुछ भी उसके उद्देश्य से विचलित नहीं करेगा। वह अपने अद्भुत अनंत अनुग्रह से ऐसा ही करेगा। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पौलुस कहता है क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह इसराइलियों पर दया करे, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उसकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता है कि वह मूसा है। उसने कहा कि वह जिस दिन चाहता है दया और अनुग्रह बरसाता है। अतः धर्म के काम करना और आराधनालयों में उपस्थित होना दया का पात्र बनने की योग्यता नहीं है, लाइसेंस नहीं है। दया का देने वाला प्रभु यीशु है। मेरे मित्रों, हम प्रेरित पौलुस के साथ कह सकते हैं कि हम जो भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हैं। हम अपने बल पर कुछ भी नहीं हैं। जकरिया 8 अध्याय के 15 पद में लिखा है उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। परमेश्वर उनसे कहता है तुम व्यवस्था पालन करो या ना करो, मैं तुम पर दया प्रकट करूंगा, परंतु यह समृद्धि का समय तो लगभग नहीं के बराबर ही है। परमेश्वर दूर भविष्य को देख करके कहता है वह समय आने वाला है जब मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा और उस समय मैं पृथ्वी पर एक महिमा का काम करूंगा। वह प्रभु राज की चर्चा कर रहा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम सब भी अपने जीवन में प्रभु को आने दें, प्रभु राज को स्थापित करने दें, ताकि हम भी उसके राज्य के वारिस हो सकें। वे अंत के समय में परमेश्वर के प्रतिनिधि होंगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जैसा चाहें वैसा ही जीवन जिएं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा भी जीवन जीना चाहें जिएं। बहुत से लोगों का सोचना ऐसा ही है और यही कारण है कि वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। जकरिया 8 उसके 16 पद में लिखा है जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। लिखा है जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? यदि हाँ तो आप परमेश्वर के अनुग्रह और दया से उद्धार पा चुके हैं। परंतु एक पल के लिए आप रुकें। वह यह भी कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ, आप उद्धार पाने के लिए उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं क्योंकि आपने उसके अनुग्रह और उसकी दया से उद्धार पा लिया है। आज्ञा पालन आपके उद्धार में कभी कुछ नहीं कर सकता है और आप अच्छे काम करके उद्धार नहीं पा सकते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा आपको मिलता है। आगे लिखा है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। आज जीवन के हर एक परिदृश्य में झूठ स्वीकार्य है। आप मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र को देखें, सेना, शिक्षा, विज्ञान, सत्य का तो चलन ही समाप्त हो गया है। अब समय आ गया है कि स्कूलों में सिखाया जाए कि जो सच नहीं बोलता वह झूठा है। यहां पर लिखा हुआ है, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। आज शपथ भी झूठी खाने वाले स्वयं गवाह हैं। लिखा है सच्चाई का न्याय करना। हम न्याय करेंगे, चाहे वह सत्यनिष्ठ हो, न्यायनिष्ठ हो या भ्रष्ट हो। उसके कहने का अर्थ है कि हमारे मन में क्या है। न्याय की प्रेरणा सत्य होना है। जकर्याह 8 उसके 17 पद में लिखा है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की यही वाणी है। कहता है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, अर्थात अपने पड़ोसी की वस्तुओं का लालच न करना। तब कहता है, झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं अर्थात परमेश्वर घृणा करता हूं। जकर्याह 10 आज्ञाओं के संदर्भ में कह रहा है। 10 आज्ञाओं में ये बातें हमारे उद्धार के लिए नहीं है, वे हमें परमेश्वर की घृणा का कारण समझती हैं। हम अधिकतर सुनते हैं परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ, यह सच है, परंतु परमेश्वर घृणा भी करता है। आप एक बात से लगाव रखते हैं तो दूसरी बात से घृणा भी करते हैं। इसी प्रकार यदि आप सत्य से प्रेम करते हैं तो आप झूठ से घृणा करेंगे। यदि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसे काटने वाले कुत्ते से अवश्य ही घृणा करेंगे। आप तो उस कुत्ते को मार भी डालेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर भी कुछ बातों से घृणा करता है, जिन्हें दीवारों पर लिख देना चाहिए। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, वह लालच से घृणा करता है, वह बहुत बातों से घृणा करता है जिन्हें आज संसार कर रहा है। मेरे मित्रों, आप दो नाव पर पैर रख करके यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप दोहरा जीवन नहीं जी सकते हैं। आप परमेश्वर के पास आ जाइए या संसार में संसार के पास चले जाइए। आपको जो जीवन पसंद है आप उसका चुनाव कर सकते हैं, परंतु याद रखें कि परमेश्वर उन बातों से घृणा करता है। जकर्याह 8 के 18 पद में आगे लिखा है, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जकर्याह फिर कहता है, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर स्पष्ट करना चाहता है कि यह उसका ही वचन है। जकर्याह 8 के 19 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और दसवें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। परमेश्वर उनसे कहता है, मैंने तुम्हें उपवास के दिन नहीं दिए, यह तुम्हारी प्रथा है, परंतु मैं इन दिनों को आनंद से भर दूंगा, प्रेम, सत्य और शांति में बदल दूंगा। आज यह सब नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें तो हमारे समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कहने का अर्थ है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुंह लटकाकर और धर्म का मुखौटा पहनकर मेरे पास आओ। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद के साथ मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, हम में से अनेक जन मसीही होने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आराधनालय आनंद का स्थल हो। क्या वह खेल का मैदान है? जी नहीं। मेरे कहने का अर्थ है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। यह आनंददायक काम होना है। यदि परमेश्वर के वचन का अध्ययन आपके आनंदित जीवन में शामिल नहीं है, तो आपके साथ कोई न कोई समस्या अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसका अध्ययन आपके जीवन में आनंद लाता है। क्या ऐसा है? जकर्याह 8 अध्याय उसके 20 और 21 पद में कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं। यरूशलेम राजधानी होगा, राजनीति में ही नहीं धर्म में भी। यह प्रभु राज के युग की चर्चा है, क्योंकि समय आने वाला है, अर्थात भविष्य में ये सब बातें घटित होगी। जकर्याह 8 के 22 पद में लिखा है, बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। कहता है बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। मेरे मित्रों, यहाँ स्पष्ट है कि यह स्थान यरूशलेम नगर है, इसकी अपेक्षा अन्य कोई स्थान नहीं है। लिखा है यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। आज यरूशलेम ऐसा स्थान नहीं है, और सच तो यह है कि वहां मसीही विश्वास की अपेक्षा अन्य सब विश्वास भी हैं, परंतु प्रभु राज में वह स्थान परमेश्वर के शासन का केंद्र होगा। यशाया अध्याय 2 तथा अनेक अन्य पद इसकी पुष्टि करते हैं। यही कारण है कि जकर्याह की पुस्तक का अध्ययन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आज आप पुस्तकालयों में दानियल पर लिखी हुई पुस्तकों की भरमार देखेंगे, परंतु यदि आप जकर्याह पर लिखी हुई पुस्तकें देखें तो वे बहुत ही कम होंगी। मेरा एक मित्र है जो प्रभु राज को नहीं मानता है और न ही यरूशलेम में परमेश्वर के पुनर्वास में विश्वास करता है। उसका कहना है कि इसराइल से परमेश्वर को अब कोई भी प्रयोजन नहीं है। वह अपनी इस बात को दानियल नबी की पुस्तक पर लिखी उसकी पुस्तक में सिद्ध करता है। मैंने उससे कहा, भविष्यवाणी मनुष्य की व्याख्या नहीं है। आपने दानियल पर टीका करते समय जकर्याह को संदर्भित क्यों नहीं किया? उसने मुझे घूर कर कहा, आवश्यक नहीं है कि मैं जकर्याह का संदर्भ दूं। मैंने उससे स्पष्ट कह दिया कि यदि वह यह नहीं मानता है कि परमेश्वर को अब इसराइल से कोई प्रयोजन नहीं, तो वह जकर्याह की पुस्तक पर विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा। मेरे मित्रों, जकर्याह स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ने न तो यरूशलेम को और न ही इसराइल जाति को त्यागा है। जकर्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसके 23 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लिखा है उन दिनों में। अब प्रश्न है कब? यह प्रभु राज है, महाक्लेश से उन दिनों का आरंभ होगा और फिर प्रभु यीशु का पुनः आगमन होगा। वह इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करेगा। प्रभु राज्य के बाद पृथ्वी पर प्रभु यीशु का अनंत राज्य होगा। लिखा है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मेरे प्रियो, अब क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया है? प्रभु राज के समय कलीसिया पृथ्वी से उठा ली जाएगी। यहाँ 10 से अभिप्राय है सब अन्य जातियां। वे यरूशलेम की ओर आकर्षित होंगी और वहां जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु यीशु होगा, प्रभु राज का मंदिर होगा और वह स्थान परमेश्वर की आराधना का स्थान होगा, और इसलिए सब मनुष्य जाति उसकी ओर आकर्षित होंगी। मेरे श्रोता मित्रों, अभी यह सब कुछ नहीं हुआ है, परंतु वह समय आता है जब प्रभु यीशु फिर से आएंगे और ये सारी बातें उसमें पूरी हो जाएगी। परंतु प्रश्न यह है कि क्या आज मैं प्रभु यीशु को जान पाया हूं? क्या मैं सत्य पर विश्वास करता हूं? यदि नहीं, तो आज मुझे भी इस वचन के प्रकाशन में जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। मेरे श्रोता मित्रों, आप अवश्य ही आज के वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को टटोल करके देखें, और यदि आप पाते हैं कि आप गलत हैं, तो आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वह आपके पापों को क्षमा करेगा। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मसीह से लगा लिया, मैंने तो अपने दिल को मसीह से लगा लिया। गुम करता है हयात में मंजिल से लगा लिया।